श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 26 नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन तुष्टमनागत स्पृह कालं प्रतीक्षं विमदो विमत्सरः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन तुष्टमनागत स्पृह कालं प्रतीक्षं विमदो विमत्सरः ट्रांसलेशन इन पर्पोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद. Thus, I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. Purport. The life of a sincere devotee of the Lord is thus explained in a nutshell by Narada Muni by his personal example. Such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. Such devotees have no desire for material gain. They are conducted by one single desire, to go back to Godhead. This awaits them in due course on quitting the material body. Because they have the highest aim of life, going back to Godhead, they are never envious of anyone, nor are they proud of being eligible to go back to Godhead. Their only business is to chant and remember the holy name, fame, and pastimes of the Lord, and according to personal capacity, to distribute the message for others' welfare without motive of material gain. तो आज के श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है. नारद मुनि व्यासदेव को बतला रहे हैं कि कैसे भगवान के साक्षात्कार के बाद और दूसरे बाद फिर से भगवान सुनने के बाद कहते हैं कि इस तरीके से मैं भगवान के नाम और गुण फिर फिर से दोहराते हुए और इस भौतिक संसार से सारे नियमों की परवाह न करते हुए मैं चल पड़ा. ऐसे भगवान का गुणगान और उनका स्मरण, दिव्य लीलाओं का स्मरण, ये मंगलमय है और ये करते हुए मैं पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा, पूर्ण रूप से तृप्त, नम्र और बिना असूया के. तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक प्रामाणिक और सिंसियर भक्त का जो जीवन है उसको एक श्लोक के अंदर बहुत सरल रूप से नारद मुनि अपने खुद के उदाहरण द्वारा दिखला रहे हैं. ऐसा भक्त कैसा होता है? ऐसा भक्त अपने दीक्षा भगवान के द्वारा या उसके उनके प्रतिनिधि द्वारा दीक्षित होने के बाद बड़ी तीव्रता से और बड़ी गंभीरता से भगवान की गुणगान करते हुए चारों ओर पूरे संसार में जाता है और फैलाता है संदेश को, ताकि दूसरे लोग भी इसका ऐसे दिव्य जो भगवान का गुणगान है वो सुन सके। ऐसे भक्त के हृदय में कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती है। उनका सिर्फ एकमात्र इच्छा होता है कि भगवत वापस भगवत धाम जाना, और ये अपने आप ही समय के अनुसार उनको प्राप्त होता ही है जब वो इस शरीर को त्यागते हैं। और क्योंकि इनका सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है कि वापस भगवत धाम जाना, वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं और ना ही उनको कोई अहंकार होता है कि मैं वापस भगवत धाम जाने योग्य हूं। उनका एकमात्र कार्य होता है भगवान का गुणगान करना और उनके नाम यश और दिव्य लीलाओं का स्मरण करते रहना और अपनी शक्ति के अनुसार इस संदेश को दूसरों की कल्याण जन कल्याण के लिए बिना कोई भौतिक हेतु के बांटना। तो यहां नारद मुनि व्यासदेव जी को बड़े सुंदर तरीके से बतला रहे हैं कि सचमुच में एक महात्मा का लक्षण क्या है, एक भक्त का लक्षण क्या है और उसका जीवन क्या होता है। सिर्फ एक श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से नारद मुनि यहां समझाते हैं। एक एक श्लोक भी इतना महत्वपूर्ण है इसमें। नामानि अनंतस्य, भगवान अनंत गुण वाले हैं। योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। योवा अनंतस्य, जो अनंत भगवान हैं उनके, योवा अनंतस्य गुणान अनंतान, अनंत गुण वाले हैं वो। इसीलिए शेषनाग अपने हजारों मुख से अभी तक भगवान की गुणगान कर रहे हैं पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो अनुक्रमिष्यन् अगर कोई उसकी गणना करने की कोशिश करे, अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, वो मूर्ख है। कभी कभी बच्चे लोग बाहर बैठकर तारे गिनने की कोशिश करते हैं कि कितने तारे हैं आसमान में, तो बाल बुद्धि है। क्यों? रजांसी भूले है गणयेत कथंचित कालेन। रजांसी भूमे है, इस भूमि में जितने धूल के कण हैं, रजांसी भूमे है गणयेत कथंचित कालेन, शायद कभी एक व्यक्ति पूरे इस पृथ्वी में कितने मिट्टी के कण हैं हम सोच सकते हैं। कभी हम झाड़ू लगाते हैं और थोड़ा अंत में वहां इतना धूल बैठ जाता है और वो निकालते निकालते थोड़ा बच जाता है और उसे भी हम गिन नहीं सकते, वो भी हमारी बुद्धि से परे है। तो फिर पूरे पूरे चौपाटी में अगर जाएंगे तो समझ लीजिए आप कितने रेती है कण, ये भी हम नहीं कर सकते। फिर भूमे में, पूरे भूमि में कितने मिट्टी के कण हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है। रजा पर यहां कहते हैं कि रजांसी भूमे है गणयेत कथंचित कालेन नैव अखिल शक्ति धामनः। अखिल शक्ति के धाम जो भगवान हैं, इनके गुणगान कभी खत्म नहीं हो सकता है। और जितना करो ऐसे लगता है कि काश मेरे जिह्वा और हजार होते, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, और काश मेरे लाखों कान होते कि इतना अमृत पी सकूं। बहुत सारा चीज हो, कभी कभी गोवर्धन पूजा जिस दिन हुआ था उस दिन इतने सारे प्रसाद था और चार लड्डू खाने के बाद फिर पेट भर गया, खाना नहीं हो सकता था। तो सोच रहे थे काश थोड़ा कैपेसिटी मेरा ज्यादा होता, क्योंकि इतना बड़ा भोग लगाया हुआ है और कम से कम 64 या 80 तरीके के व्यंजन थे, एक भी थोड़ा थोड़ा सब एक थोड़ा भी टेस्ट करने नहीं हुआ। तो कितना लगता है जो ऐसे एक व्यक्ति को लगता है कि काश मेरा कैपेसिटी ज्यादा होता कि मैं सबका एक एक कम से कम आइटम खा सकता। तो इस तरीके से एक शुद्ध भक्त भगवान को इतना प्रेम करता है कि वो उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है बाद में, क्या कहे वो, क्योंकि इस शब्दों से भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। अखिल शक्ति धामना, इतने अनंत और इतने पूर्ण गाढ़े गुण वाले हैं भगवान, तो उसका वर्णन करना, इसीलिए वो कुछ नहीं कर स्तब्ध हो जाते हैं लोग। जो सचमुच में साक्षात्कार होता है भगवान, जैसे ध्रुव महाराज के कुछ नहीं कर पाए और फिर भगवान की कृपा से जब वो
शंख ऐसे स्पर्श किए तब जाके कुछ कह पाए। और उस समय जो कहते हैं, जो पूरा भागवत है, ये सिर्फ यही प्रार्थना है। भगवान खुद अपने बारे में या भक्त उनके बारे में बताते हुए, या भक्तों के गुण जब वो शुद्ध हो जाते हैं भगवान के एक होने, भगवान से गुण में एक होने के कारण अपने आप उनके अंदर सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो भक्तों में अगर इतना छोटा सा गुण है जो एकदम लेश मात्र है, मतलब एक समुद्र के बूंद के समान है, वो उनके अंदर हम इतना गुणगान करते, कभी कभी हम ऐसे शुद्ध भक्तों की गुणगान करते करते थक जाते हैं, हम नहीं कह पाते हैं। और हमको लगता है जैसे चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि एक एक भक्तों की गुणगान करते हुए हम समझते हैं कि मैं एक बौना के समान हूं जो चंद्र को छूने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक ऐसा जीव जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उनका गुणगान करते करते हम कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे अखिल शक्ति धाम में भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करते रहे तो व्यक्ति कब तक करते रहेगा। तो नामानि अनंतस्य, तो ये गुणगान पर कैसे, हतत त्रपह, बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, सारे इससे मुक्त हुए भक्त जो हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं कभी कभी और इसमें वो हम बद हो जाते हैं, इसीलिए सर्वधर्मान परित्यजमान एकम शरणम व्रजा, इनकी कोई चिंता नहीं करते हुए बहुत सारे नियम, जैसे प्रचार के लिए कभी हम जाते हैं, किताब वितरण के लिए कभी जाते हैं, तो बहुत सारे नियम देखते हैं, इनको कहेंगे इसको क्या होगा, ये व्यक्ति समझेगा कि नहीं, ये किताब तो 65 रुपए का है, इसके पास तो 10 रुपया भी नहीं है, लगेगा तो दूंगा नहीं, कभी कभी कुछ हम सोचते हैं। कभी कभी वैसे ही मतलब सिर्फ देने चले जाते हैं, किताब देने चले जाते हैं, पता नहीं उनमें से एक कम से कम सुने, कम से कम वो देखेगा। तो इसी तरह से कोई नियम नहीं देखते कि इसके अंदर योग्यता है या नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु की यही खासियत है कि किसी की योग्यता नहीं देखे, कम से कम ठीक है हाथ में पकड़ो, उसमें से अगर हो गया ले लिया ठीक है, पर कम से कम उसका शुद्ध हो गया तो वो देखते ही नहीं है। हम बहुत अपनी बहुत ही कैलकुलेशन से देखते हैं, वही ये लेगा या नहीं, ये खरीदेगा या नहीं, इसको दूं या नहीं, इसके समझ में आएगा या नहीं, पर उनको समझना चाहिए भक्त जो हैं सारे भौतिक नियमों से इसकी चिंता नहीं करते कि ये कौन है किस तरीके से और सब कुछ। हतत्रपह पठन गुभियानी, ये बहुत ही गुभ्य है, और भद्राणी, भद्राणी यानी ऑल ऑस्पिशियस सर्वमंगलमय, और कृतानी च स्मरण, और एक्टिविटी, कृतानी यानी एक्टिविटीज, यानी कुछ करते रहते हैं वो, चुपचाप बैठे नहीं रहते कि काश ऐसा हो सकता, अपने अपने कर्म द्वारा दिखा रहे हैं। कृतानी स्मरण गाम पर्यटन, पूरे भूमि में सब जगह पर्यटन करते हैं, सब जगह घूमते हैं ये देने के लिए। तुष्ट मना, पूर्ण रूप से तृप्त हैं, लोग भी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी घूमते हैं, पूरे सारे जगह ढूंढते हैं मार्केट ढूंढने के लिए, वो इतने में मार्केट में तृप्त नहीं है। अगर ऑल इंडिया भी हो गया, ऑल महाराष्ट्र परमिट हो गया, फिर पूरा ऑल इंडिया परमिट भी हो गया, तो और ज्यादा फैलाने के लिए घूमते हैं, वो भी इधर उधर घूमते रहते हैं। पर यहां ये तुष्ट मना है, ये कोई इच्छा से नहीं है, ब्रह्मभूत प्रसन्न न शोचती न कांक्षती, कोई शोक या कोई आकांक्षा नहीं है इतना, पर फिर भी तुष्ट मना, पर फिर भी भ्रमण क्यों करते हैं। गतस्पृह, इनके अंदर कोई भौतिक इच्छा भी नहीं है। कालम प्रतीक्षण, काल आने वाला है, जब मृत्यु आएगी, जैसा ही शरीर छूट जाएगा तो वापस भगवत धाम जाना है, मुझे मालूम है कि अगर नित्य सेवा करते रहेंगे तो भगवत धाम जाएंगे अपने आप, जब समय आएगा वो जाएंगे। तो कालम प्रतीक्षण, उसकी चिंता नहीं है कि कब आएगा, जाएंगे या नहीं, उसकी चिंता नहीं है, कालम प्रतीक्षण आएगा, जब आएगा देखा जाएगा। विमदह यानी विदाउट बीइंग प्राउड, और विमत्सरह बिना कोई ईर्ष्या के, कभी अहंकार नहीं होता है कि मैं इतने लोगों का उद्धार कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये सब हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, कि मैं करने वाला नहीं हूं, अगर भगवान चाहे तो एक क्षण के अंदर मेरे द्वारा करोड़ लोगों को भक्त बना सकते हैं, या फिर करोड़ सालों तक मैं प्रचार करूं एक भक्त भी नहीं बन सकता, एक पत्थर के द्वारा वो पूरे दुनिया को प्रचार कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं वो पूर्ण रूप से शरणागत थे, 40 साल तक यहां प्रचार करते थे, एक भक्त नहीं बना, एक शायद दीक्षा लेने की कोशिश की, बस एक भक्त, और उसके बाद 10 साल के अंदर हजारों भक्त बन गए। उनको कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी, इच्छा नहीं थी, अरे इतना बनाना है कि इतना भक्त नहीं बने तो यहां जाके कहीं और करूंगा। सब जगह कोशिश तो कर रहे हैं, सब जगह बांटने के लिए, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, ये पूर्ण रूप से उसमें निरासक्त। तो निरासक्त का मतलब ये नहीं है कि कुछ आसक्ति नहीं है तो बैठे रहेंगे, आना है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं, अपनी कोशिश पूर्ण रूप से हम लगा रहे हैं पर एकदम फल में आसक्त नहीं है। इसीलिए भक्त कभी विचलित नहीं होता है, पर कभी ना ही कभी ढीला पड़ता है कि नहीं नहीं आएंगे तो आएंगे, अगर भगवान करना है तो जब चाहेंगे मेरे को ले जाएंगे और कराएंगे, नहीं मैं करते रहूंगा भगवान की इच्छा, जब चाहे दें या नहीं दें। और इस तरीके से क्योंकि वो उसके अंदर कोई अहंकार भी नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई मत्सरता है, तो ये एक भक्त का लक्षण है, महात्मा का लक्षण है। रूपा जी हम बताते हैं कि इस श्लोक के अंदर एक भक्त का पूर्ण जीवन एक नक्शल में दिया गया है, मतलब एकदम संक्षिप्त रूप में एक श्लोक के अंदर भक्त का जीवन दिया गया है। भगवद्गीता में भी एक श्लोक है जो ऐसे एक महात्मा का वर्णन करता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम के सतत मेरी कीर्तन करते रहते हैं वो। अब अगर भगवान के गुण का कीर्तन करना है, भगवान के धाम का कीर्तन करना है, या भगवान के नाम का, भगवान के रूप का गुणगान करना है, तो उसको एक भक्त होना चाहिए, उसे ये जानना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति नहीं है तो कैसे गुणगान करेगा इसलिए लोगों की। अगर हम समझेंगे कि निराकार निर्विशेष भगवान है, न उनका गुण है, न उनके नाम है, न उनके धाम है, न उनके कुछ रूप है, तो फिर कौन गुणगान करेगा। तो असली महात्मा है सततम कीर्तयन्तो माम, सिर्फ वो व्यक्ति जो भगवान को पूर्ण रूप से जानता है। भक्त्या तु अनन्यया शक्य भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। इसीलिए सिर्फ भक्ति मात्र से हम भगवान को जान सकते हैं और तभी हम उनकी गुणगान का प्रचार कर सकते हैं। इसका मतलब है, इसीलिए महात्मा सिर्फ वो व्यक्ति है जो भगवान के स्वरूप को मानता है और तत्वतः भगवान को जानता है। ब्रह्मेति भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम्। तो ये भगवान को तीनों रूप से जो जानता है वही सिर्फ भगवान का गुणगान कर सकता है और वही महात्मा है। और जब तक वो भगवान के व्यक्तिगत रूप को नहीं जानता है तब तक वो महात्मा हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले चाहे वो ब्रह्म साक्षात्कार क्यों ना हो या परमात्मा साक्षात्कार किया हुआ योगी क्यों ना हो, तो इसीलिए सबसे पहले अगर वो महात्मा है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति महात्मा हो सकता है और वो है भगवान का भक्त, क्योंकि वही एक तत्वतः भगवान को जान सकता है। भक्त्या तु अनन्यया शक्य, अनन्य भक्ति जो कर्म और ज्ञान मिश्रित नहीं है, भक्त्या तु अनन्यया शक्य वही एक मेरे को जान सकता है। शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, जैसा मैं हूं ऐसा अगर जानना है तत्वतः तो सिर्फ भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम जानना है, दृष्टुम अगर मुझे देखना है जैसे साक्षात फेस टू फेस देखना है, च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतप अगर मेरे धाम में प्रवेश भी करना है उसे तो सिर्फ भक्त्या तु अनन्यया शक्य और किसी से नहीं। तो इसीलिए सिर्फ एक भक्त, यही मार्ग जो है सर्वश्रेष्ठ योग है। भक्ति योग ये योग के सीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ है, पर कितना आसान है ये। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे दूसरे मार्ग अगर सारे स्टेप्स हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग में बहुत सारे स्टेप्स हैं, कदम चढ़ते चढ़ते जाना है सीढ़ी, तो ये लिफ्ट के समान है, डायरेक्टली हमको उनके भगवान के कीर्तन में लगा देता है और इससे अपने आप योग की सर्वश्रेष्ठ चीज प्राप्त हो जाती है। योग यानी मुख्य चीज से दो चीज, अपनी इंद्रियों को और अपने मन को वश में करना। जहां की दूसरे योग जो है वो बतलाते हैं कि कैसे इंद्रियों को और मन को वश में किया जाए, पर भक्ति जो है शुरू से ही सिर्फ वश में करना नहीं बल्कि उसे सही स्थिति में लगा देना हो जाता है पॉजिटिव। इसीलिए ये सब अष्टांग योग द्वारा इंद्रियों को संयम करके बाद में भगवान में लगाना समाधि के स्तर पर, तब जाके जब शुद्ध भक्त के साथ उसका संपर्क आता है तब जाके वो भक्ति में लगता है। ज्ञान, ज्ञानी जो ब्रह्म साक्षात्कार भी किया हो, एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर जैसे शिवदेव गोस्वामी भागवतम का वर्णन सुने या फिर चतुष कुमार भगवान के साक्षात्कार किए या ऐसे भक्तों के संपर्क में आकर अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अपने इंद्रियों मन को कायम संयम किए हैं, पर पॉजिटिव एंगेजमेंट तभी होता है। पर एक भक्त शुरू से ही अपने मन सततम कीर्तयन्तो माम स्मर्तव्यः सततम विष्णुर, हमेशा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो क्योंकि हमेशा स्मरण कर रहा है कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, तो क्योंकि शुरुआत से ही चाहे वो साधना भक्ति से ही एक बार वो 24 घंटे साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य में जाते चित, और मन उसका ऑलरेडी एंगेज है, सर्वश्रेष्ठ योगी है वो, और इंद्रियां साधना भक्ति में भी भगवान की सेवा में लगी हुई है। और जब तक साधना भक्ति से द्वारा अगर हमारी इंद्रियां और हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तब तक डायरेक्टली हम लोग योग के सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हैं। कभी कभी एक पूरा दिन अगर व्यस्त रहे हम लोग, तुमको लगता है कि कभी कभी शायद हम लोग खाना भी नहीं खाए पर पता ही नहीं चलता है, बहुत आनंद का महसूस होता है, भूख भी नहीं लगता, प्यास भी नहीं लगता है, पर फिर दूसरे दिन एक बार सो गए तो फिर उठना बड़ा मुश्किल है, पर कम से कम उस समय एक अनुभव होता है कि कुछ ऐसा हो गया, कैसे अद्भुत पता नहीं, बहुत आनंद आता है। जिस हद तक 24 घंटे हमारे मन और इंद्रियां बिजी है, इसीलिए खास करके महाराज एक बार ब्रह्मचारी क्लास में बता रहे थे कि ब्रह्मचारियों को अपना एक शेड्यूल बना के रखना चाहिए, एक क्षण भी मेरा व्यर्थ ना जाए कि मैं क्या कर रहा था, 24 आवर्स एंगेजमेंट। कभी कभी हमको लगता है क्या मेरे ऊपर इतना जबरदस्ती जा रहा है, इतना ये करना, थोड़ा मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मैं जो करना चाहता हूं। पर सचमुच में जिस हद तक हमारा सारा टाइम फिक्स रखेंगे, ये करना है वो करना है ये करना है करना, अगर आपके पास 24 घंटा है तो 26 घंटे का शेड्यूल हमारे पास होना चाहिए, और उसको किसी तरह से 24 घंटे में दबाने की कोशिश करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है, भक्ति में प्रगति का एक लक्षण है कि उसके एक क्षण भी अगर चला गया तो बहुत दुख होता उसे, व्यर्थ गया वो मेरा, बिना भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाए या बिना अपने मन को भगवान की स्मरण में लगाए व्यर्थ चला गया मेरा, वही सबसे बड़ा उसको दुख है और कुछ नहीं। भक्त को भी दुख होता है, सम दुख सुखी, वो तो एक स्तर हुआ भौतिक दुख नहीं, पर इसको भी दुख होता है कि एक क्षण मेरा व्यर्थ गया भगवान की सही सेवा नहीं करते हुए या भगवान का चिंतन नहीं करते हुए। इसी तरह से उसको भय भी है, भय क्या है कि कभी मैं फिर से माया में न चले जाऊं, यही भय है उसका, वो भी भयभीत होता है और उसका भय यही है, और ये भय में भी वो हमेशा चिंतन कर रहा है भगवान की कि आपकी चरण कमल को मैं पकड़े रहूं कभी ना छोड़ू, तो ये भक्त का लक्षण है। तो सततम कीर्तयन्तो माम, अगर कीर्ति करना है तो सिर्फ भक्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, तो सततम कीर्तयन्तो माम, और माम ये वो जरूरी है, सततम कीर्तयन्तो माम, और किसी की नहीं, सारे देवी 33 करोड़ देवी देवताओं की नहीं, माम सिर्फ माम। इसलिए प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, नवदा भक्ति बताते हुए बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंस अर्पिता विष्णोः भक्तिश्चेन अवलक्षणा। भक्ति यानी भगवान कृष्ण की भक्ति, दूसरी कोई भक्ति नहीं हो सकती, दूसरी आराधना हो सकती है, पर सही भक्ति यानी भगवान की भक्ति। यहां बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बता रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, और किसी की नहीं। तो और तीसरा यतंतश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक, चाहे कभी कभी इसमें आनंद आए या नहीं आए, यही साधना भक्ति। अभी हम सब साधना भक्ति के स्तर पर हैं, फिर भी दृढ़व्रता यतंतश्च, पूरी कोशिश है, क्योंकि ये हमेशा एक लड़ाई है और इसमें हमेशा हमको सावधान होना चाहिए। यतंतश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक, कभी हो सकता है कि हमको लगेगा कि हम हार रहे हैं, कभी हम ढीले पड़ रहे हैं, पर फिर भी दृढ़व्रता दृढ़व्रता, इसीलिए साधना दी गई है, चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे, मंगल आरती में आना, 16 माला जप करना, चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे, बहुत सारे हमें अच्छा नहीं लगता है, हालांकि हम जानते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है, मन को लगाना इधर उधर भाग रहा है फिर भी, तो इसीलिए साधना भक्ति है। दृढ़व्रता, बहुत सारे नियम बताए गए हैं, एकादशी इत्यादि या फिर जन्माष्टमी के दिन व्रत पालन करना, तो ये नियम बहुत सारे भक्ति के बता रहे हैं। सततम इसका उद्देश्य यही है कि सततम विष्णु स्मर्तव्यम स्मर्तव्यो न जातुचित। तो ये अगर जानना, इसीलिए ऐसे भक्तों के संग में आकर और ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जितना हम अध्ययन करते हैं उतना हमको समझ में आता है कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे, जब हम समझ जाते हैं हमें खतरनाक बीमारी हो गया है और अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, तो चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे, सारे दूसरे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको एकदम जब वो दवाई देता है और सब कुछ खाना खाना भूल जाए पर दवाई लेना नहीं भूलते। जो व्यक्ति सही तरीके से जान गया है ये खतरनाक बीमारी है और ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है मेरे लिए, और वो कैसे समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि संसार दावान अलली ढलोका, सुबह आके हम लोग मुंह खोलते हैं भगवान के सामने तो संसार दावान अलली ढलोका ये बताते हैं, ये सबसे बड़ा खतरनाक जगह है। तड़य कारुण्य घन घनत्व, तो ये कृपा को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना। तो हिरंतश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक हम सेवा में लग जाते हैं और जो भी साधना भक्ति है उसको करते रहते हैं। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, तभी अपने आप सारे एक अच्छे गुण जो हैं एक भक्त के अपने आप व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाएंगे, इसके लिए कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं। साधु का लक्षण क्या है बताते हैं कपिल मुनि देवती माता को, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण, कि तितिक्षव टॉलरेंस सहनशीलता, सबसे पहले जब तक हमारे अंदर करुणा नहीं है तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते भक्ति में लगने के लिए। प्रचार दूसरों को गाम पर्यटन, गाम पर्यटन तुष्ट मनागत स्पृह, तो गाम पर्यटन ये एक अगर हमारे अंदर करुणा उत्पन्न करना है तो जबरदस्ती हम प्रचार करते हैं, ये किताब वितरण हमें जबरदस्ती करना चाहिए। क्यों? कि कम से कम बाहर रूप से करेंगे तो शायद थोड़ा करुणा पैदा होगा, पर सचमुच में अपने आप हो जाएगा जब हम करुणा हमारे हृदय में आ जाएगी, इसलिए हम जा रहे हैं। और उस समय ये हमारे लिए तपस्या नहीं होगी, अभी हमारे लिए तपस्या है, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत तपस्या है, निकलना है तो मुझे लगता है क्या कुछ और काम है, कुछ ना कुछ मन से हम कुछ और काम निकाल लेते हैं कि नहीं ये करेंगे वो करेंगे, पर सचमुच में हम जानेंगे। खैर ऑफ कोर्स ये भी दिस आल्सो इज ओनली फॉर दिस मंथ, उसके बाद हमारी साधना भी सही होते रहना है, इसमें हम ढीला नहीं पड़ते हैं। तो एक महीने के लिए 11 महीना चार्जिंग होने के बाद एक महीना थोड़ा डिस्चार्ज करना है दूसरों में पूर्ण तरह से जो हमने प्राप्त किया, ये करुणा का लक्षण है। तो राम पर्यटन जब जाते हैं तितिक्ष कारुणिका, ये करुणा आना चाहिए, और करुणा अगर आप बांटने जा रहे हैं तो सब जगह आपको रेड कार्पेट वेलकम नहीं मिलने वाला है 100%, कोई वापस लेगा आपके मुंह में ही फेंक देगा शायद, और इतने इतने गाली देंगे आपकी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है उसको भी हिलाने की कोशिश करेंगे। तो मूर्ख क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, क्या ऐसे फुटपाथ पे खड़े क्या बोल रहे हो, तुम्हारा इतना अच्छा ये था तुम क्या कर रहे हो इधर, और हमको भी खुद लगने लगता है कि क्या कर रहा हूं मैं कुछ ये इतना चिल्ला रहा हूं कोई ले नहीं रहा है समय बर्बाद कर रहा हूं उधर। तो हमको समझना चाहिए कि लोग समझे या नहीं समझे, जाने या ना जाने, जैसे कभी कभी माँ बच्चे को कहती है कि दवाई ले लो तो चिल्लाता है घूसे मारने लगता है कि ढकेलने लगता है मुंह बंद कर लेता है आंख बंद कर लेता है सब, और कोशिश करना पड़ता है चिल्लाते रहता है और शायद कभी कभी जोर से मारने भी लगता है भाग जाता है बहुत तकलीफ देता है। पर इसीलिए तितिक्षा होना चाहिए, अगर गाली हम भी अगर उल्टा कहने आएंगे ठीक है मर लेना जो क्या तेरे लिए बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं तू भाग रहा है तो जब भाग, ऐसे नहीं, कृपया प्लीज चैतन्य महाप्रभु अरे नित्यानंद और हरिदास के जैसे दंते तृणधरी उसके पैर पड़ते थे नित्यानंद प्रभु आदि गुरु में, वो हमको दिखा रहे हैं कि कैसे हमको जाना चाहिए कि ठीक है आप सर फोड़ दो मेरा जगह मेरा बोल रहे थे कम से कम एक बार किताब को देख तो लो कम से कम एक बार छू लो बस पकड़ लो। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि हमारे एक भक्त क्या है डायरेक्टली उस व्यक्ति के छाती पर रख देते किताब को लो 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 तो डायरेक्टली वो कांटेक्ट हो जाता है और कुछ उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है ले लेता है तो सबसे हम नहीं कर सकते, जो जिसके बहुत ज्यादा श्रद्धा वही कर सकता है। जो जो 100 बुक से ज्यादा किए शायद वो लोग करते हैं। तो ये करुणा का दूसरा लक्षण है, पर कभी कभी वो वापस तितिक्षवा नहीं होंगे, बहुत तकलीफ हो सकता है। तितिक्षवा कारुणिका, करुणा का एक लक्षण है, जब दिखाने जाएंगे सब लोग इतना आराम से स्वीकार नहीं करेंगे तितिक्षवा, तो इसलिए तितिक्षवा होना चाहिए। हरिदास ठाकुर के उदाहरण से हम देखते हैं कि 22 मार्केट में उनको मारा गया, 2 मार्केट के बाद कोई जीता नहीं था आज तक। इतना मारने के बाद भी वो प्रार्थना यही कर रहे थे कि इस व्यक्ति को जो मार रहे हैं इनको कोई तकलीफ ना हो, इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत खतरनाक, जानते हैं कि अपराध जो है बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। हालांकि वो अपने आप को भक्त नहीं मानते, पर भगवान उसे बुरा मानते हैं, इसीलिए जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करते हैं कि फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। तो अगर एक व्यक्ति जानता है कि मेरे पिता बहुत बड़े करोड़पति हैं और ये लड़का मेरे को आके सड़क का लड़का मुझे मार रहा है, तो अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि मेरे बेटे को उसने मारा, तो उसको खत्म कर सकते हैं गुस्से से, 4 सिपाही को भेज देंगे उसके पीछे। तो इस तरीके से वो कहता है कि नहीं नहीं, अगर लड़का बोल दे कि नहीं नहीं माफ कर दो ये मेरा दोस्त है चलेगा, तो ठीक है माफ कर देंगे। इसीलिए भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे ऊपर जो अपराध कर रहे हैं, एक्चुअली वो समझते हैं कि जहां तक अपराध का सवाल है बोलते हैं मेरे को तो चाहिए था, ये नम्र बनने के लिए सब सही हो रहा है, पर इस व्यक्ति को माफ। और ये करुणा का लक्षण है कि वो फिर से बांटते रहते हैं हरि नाम, भगवान के नाम, कृष्ण कथा देने में एकदम तीव्र रहते हैं, इसकी कोई लक्षण है। तो ये कम से कम बाहर से कोशिश करेंगे तो शायद हमारे अंदर अपने आप तो नम्रता आ जाएगी और हमको सारे जो विष है वो भी धीरे धीरे निकलेंगे, हमको पता चलेगा। कम से कम एक बार जब मैं पहले बार बाहर गया था अतिस्ट भक्त का वेश पहनकर, तो लोग जब चिढ़ाने लगे तो मुझे याद आया, तुरंत याद आया मेरे को कि मैं जब स्कूल में था तो ऐसे जो भी ऐसे जाते थे उनके बहुत मजाक करता था, तुरंत मेरे को याद आया। और तब मेरे को लगा हाँ, ऐसे सारे जो मेरे है सब बाहर निकलने की भगवान की कृपा है कि मेरे को वही मेकिंग मी पास थ्रू द सेम सिचुएशन। और तब मुझे समझ में आया कि कैसे अज्ञान से मैं ऐसे लोगों की मजाक करता था। तो इस तरीके से हम कैसे सारा अहंकार जो है हमारा ये नष्ट हो जाता है जब हम इस स्थिति में हम जाते हैं, कभी कभी अपने आप को डालते हैं कैसे, मतलब ऐसे सामने चलो नकार देते हैं, बहुत ही अच्छा है एक स्तर के लिए हमारे लिए। तितिक्षवा कारण कहा सर्वद सर्वदेही नाम, ये दूसरा लक्षण है कि बिना कोई आसक्ति के सबको बांटने की कोशिश करते हैं। सर्वद सर्वदेही नाम ये नहीं है, कोई मतलब बाहर के लक्षण नहीं देखते हैं। भक्त जो है सबको सुहृदय सर्वदेही नाम, यहां तक कि प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की तरह ये भी नहीं देखते कि उसका शरीर मनुष्य है या पशु का है। सुहृदय सर्वदेही नाम ये एक साधु का लक्षण है, क्योंकि वो समझता है कि जैसे श्यामानंद प्रभु उस दिन बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि एक पागल, अगर अपने घर का कोई पागल हो जाता है, घर का व्यक्ति कोई अगर पागल हो जाता है और अपने आप को कुछ कुछ बताने लगता है तो हमको बहुत दुख होता है कि अरे क्यों ऐसे पागल जैसे इधर उधर भटक रहा है, तो उसको लाने की। इस तरीके से कोई भी जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है पागल है, तो दुख होना चाहिए। और दुख कम से कम ये जब ये बाहरी रूप से हम कुछ सहायता करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि क्या है ये है। तो सर्वे अजात शत्रु वह, अजात शत्रु वह के इनके कोई शत्रु का सवाल ही नहीं है शुद्ध भक्तों के जीवन में। जैसे नारद मुनि के हम देखते हैं कि शत्रु यानी शत्रु या मित्र कौन है ये उनके बर्ताव हमारे प्रति से पता चलता है। शत्रु वो है जो आपकी बुराई चाहता है, बर्ताव से पता चलता है उसकी उद्देश्य क्या है। शत्रु और मित्र में उद्देश्य में फर्क यही है कि शत्रु हमारी जो भी करता है उसका उद्देश्य है उसकी बुराई, मित्र वो है जो बाहरी रूप से थप्पड़ भी मार दे पर अगर उसका उद्देश्य है आपकी भलाई, तो सिर्फ बाहरी रूप से हम पता नहीं कर सकते उसका उद्देश्य क्या है। इसीलिए जब नारद मुनि नलकुंवर और मणिगिरी को शाप भी दिए तो वो सचमुच में मित्र था, मित्र थे वो, तो बोले कैसे मित्र हो सकते हैं, कुछ हाथ दे के पत्थर बना ये पेड़ बना दिए, पर सचमुच में उनकी भलाई का उद्देश्य था। तो अजात शत्रु वह मतलब है जो भी कुछ करते हैं, किसी को शाप दे या किसी को वरदान दे, उनका उद्देश्य उस व्यक्ति की भलाई है और कुछ नहीं। इसीलिए एक भक्त को देवतागण से भी अधिक माना गया है। क्योंकि वो जो भी करते हैं वो उस व्यक्ति की भलाई के लिए करते हैं। जबकि देवताओं का कभी कभी जो काम है किसी को तकलीफ भी पहुंचा सकता है, ज्यादा बरसात से, ज्यादा धूप से, या कि किसी को सुख पहुंचा सकता है, पर भक्तों के सारे मनसा वाचा कर्मणा जो भी वो करते हैं सिर्फ उस व्यक्ति की भलाई के लिए। तो कभी 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 हम जोर जोर से कुछ बोलने लगते हैं उस व्यक्ति को कैसा होता है, हमको समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की भलाई के लिए अगर वो हमारा उद्देश्य है। अजात शत्रु शांत परम शांति प्राप्त किया है क्योंकि वो जानता है कि यही सर्वश्रेष्ठ चीज है और इसमें अगर लगे रहे शांति में आपने होती नहीं स्थिति में परम शांति अधिगच्छति भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। वो शांत है क्योंकि वो जानता है कि भगवान ही सब चीज के भोक्ता है, वही सुख करने वाले हैं, मैं उनके एक सिर्फ एक साधन बनकर उनके ये प्रचार सर कर रहा हूं। हमेशा वो शांत रहता है, शांत साधव और अपने सारा जीवन शास्त्र के आधार वॉकिंग स्क्रिप्चर शास्त्र के आधार पर ही गुजारता है। साधव साधु भूषण उसके अंदर सारे अच्छे गुण भी हैं। तो इस तरीके से नारद मुनि यहां बतला रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो माम और इस तरीके से दृढ़ता पूर्वक यतंतश्च दृढ़व्रता। अगर सही तरीके से जैसे हम ये शुरुआत कैसे होता है दीक्षा लेने के बाद भगवान से या भगवान के भक्त से उनकी सेवा में निष्ठा दृढ़ता पूर्वक अगर हम लगे रहें और श्रवणम कीर्तनम विष्णु मन को उनकी स्मरण करते हुए उनकी गुणगान करते हुए और उनका गुणगान करने का अलग अलग तरीके हैं, नाम जप करना, उनकी कीर्तन करना, उनके संदेश को दूसरों में देना, कथा करना, या जो भी हम कर रहे हैं अंततः उनकी गुणगान कर रहे हैं, उनकी सेवा हम कर रहे हैं। तो अगर ये किसी न किसी तरह से दृढ़तापूर्वक ज्ञान प्राप्त करके अगर हम करते रहें तो बस जैसे नारद मुनि यहाँ बताते हैं कि एकदम नित्य रूप से करते हैं और वो बस उनके यही चाहते हैं कि जब तक ये शरीर है करता रहूंगा और उसके बाद क्योंकि उनका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ है वापस भगवत धाम जाना, तो इसीलिए वो हमेशा वो शांत रहते हैं, निस्पृह यहाँ कोई आसक्ति नहीं है उनका, वो आसक्ति वही है बस उन्हीं का गुणगान करते हुए यहाँ करते रहते हैं, काम है जब तक शरीर है जब तक ये है सौलभ्य है करते रहेंगे और उसके बाद वापस भगवत धाम जाएंगे, ये इच्छा करते हुए प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण सिवा कोई प्रश्न है ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की शिल प्रभुपाद की।